أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد میرے پیارے دوستو آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں جو ہمارے پچھلے پروگرام سے آگے آیا ہے اس سے بڑھتا ہوا کرم ہے ہم اپنے پچھلے پروگرام میں اس بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ کوئی اپوتر چیز کوئی پوتر چیز کس پرکار اپوتر ہوتی ہے کوئی پاک چیز کس پرکار نجس ہوتی ہے اور کون کون سے ایسے سمے ہیں جب ہم کسی چیز کی پوترتا کا حکم لگائیں گے اور اس کو اپوتر نہیں کہیں گے. ہم نے آپ کے سامنے کچھ ادھارن پیش کیے جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں بھلے ہی لوگ یہ سمجھیں کہ اپوتر ہیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے وہ پوتر ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک غیر مسلمان ریسٹورنٹ یا ہوٹل میں پائی جانے والی پلیٹیں چمچ اور اس پرکار کی چیزیں جب تک ان کے نجس ہونے کا وشواس نہ ہو جائے جب تک کہ ان کی اپوترتا کا وشواس نہ ہو جائے تب تک ان کو پوتر کہا جائے گا. اسی میں کچھ اور ادھارن بلکہ ادھارن نہ کہا جائے یہ کہا جائے وہ مسئلے جو ہمارے درشکوں اور دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے رہتے ہیں ان کو آگے پیش کر کے ہم آگے جو بات چیت کریں گے وہ مطہرات کی بحث ہوگی. یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی اپوتر چیز کو پوتر کر سکتی ہیں اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے. تو ہم اپنی پچھلی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کولڈ ڈرنکس جو جس سمے بنائی جا رہی ہیں یعنی ان کا مول پدارتھ پوتر ہو تو بھلے ہی وہ ایک غیر اسلامی دیش میں بنائی گئی ہوں یا غیر مسلمان نے بنائی ہوں وہ پوتر ہیں. اس سمے تک ان کو پوتر کہا جائے گا جب تک کہ ہم کو اس بات کا وشواس نہ ہو جائے کہ جس غیر مسلمان نے یا جس غیر اسلامی دیش میں ان کو بھرا گیا ہے ان کو بنایا گیا ہے اس کو بھرتے یا بناتے سمے غیر مسلمان کا بدن یا ہاتھ یا شریر کا کوئی انگ اس سے اس پرکار ٹچ ہوا ہو کہ اس تری ایک دوسرے میں سرایت کر گئی ہو ایک دوسرے میں چلی گئی ہو اگر اس کا وشواس نہیں ہوتا ہے تو اس کو پوتر کہا جائے گا. اسی پرکار کھانے پینے والی وہ چیزیں جو مارکیٹ میں ملتی ہیں جیسے کہ ٹافیاں بسکٹ شکر یا اس پرکار کی اور چیزیں یہ بھی چیزیں اس سمے تک پوتر ہیں جب تک کہ ہم کو اس کی اپوترتا کا وشواس نہ ہو جائے چاہے اس کو بنانے والا مسلمان ہو یا کافر ہو چاہے اسلامی دیشیں بنائی گئی ہوں یا غیر اسلامی دیشوں میں. اسی پرکار وہ تیل اور وہ گھی جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں ان کو پریوگ کرتے ہیں وہ بھی اس سمے تک پوتر ہیں جب تک کہ ہم کو اس کی اپوترتا کا وشواس نہ ہو جائے چاہے ان کو بنانے والا مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. مگر پھر وہی بات آئے گی اگر ہم کو اس بات کا وشواس ہوتا ہے کہ اس غیر مسلمان نے اس کو بناتے سمے اپنا ہاتھ یا اپنے شریر کا کوئی انگ اس سے ٹچ کیا تھا اس میں لگایا تھا اور تری ایک دوسرے میں سرایت کر گئی ہے تو اپوتر کہا جائے گا. لیکن جب تک یہ وشواس ہم کو پراپت نہیں ہوتا ہے تب تک ہم اس کو پوتر کہیں گے. اسی پرکار یہ مسئلہ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور بہت لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم غیر اسلامی دیش میں ہیں تو لانڈری یا ڈرائی کلینر کے یہاں کپڑے دھلنے کے لیے دینے کا کیا حکم ہے؟ کیا جس سمے وہ دھل کر آتے ہیں ان کو دھل کے لانے کے بعد ان کو پاک کیا جائے پھر پریس وغیرہ کی جائے یا نہ کی جائے یا وہ ایسے ہی پوتر ہیں؟ تو اس مسئلے کو بھی ہم یہاں پر اسپشٹ کر دیں کہ وہ کپڑے یا وہ چیزیں جو ہم اپنے پریوگ میں لاتے ہیں اگر کسی لانڈری میں دھلنے کے لیے دے جائیں یا کسی ڈرائی کلینر या किसी ड्राई क्लीनर के यहाँ दिए जाएँ, तो जब तक हमको उसके अपवित्र होने का विश्वास ना हो तब तक वो पवित्र हैं, दोबारा उनको पवित्र करने और उनको खंगालने पाक करने की आवश्यकता नहीं है, और इस बारे में छानबीन करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमको ये आवश्यकता नहीं है कि हम जाके लॉन्ड्री के अंदर देखें वो किस प्रकार कपड़े धुलते हैं, किस प्रकार ड्राई क्लीन वगैरह करते हैं। इसी में एक और बात आती है कि कभी कभी हम वही तकरीबन उस तरह का मसला हो जाएगा जैसे लॉन्ड्री का मसला है, उसी प्रकार कि हम अपने कपड़े किसी दर्जी को सिलने के लिए देते हैं, वो दर्जी गैर मुसलमान है, या अपनी मशीन या इस प्रकार की कोई चीज़ें ऐसे इंसान को बनाने के लिए, उसको सही करने के लिए देते हैं जो गैर मुसलमान है, तो क्या वो चीज़ें बनने के बाद, सही होने के बाद अपवित्र होंगी? तो इस्लाम कहता है नहीं, मसला ये है कि नहीं, ये उस वक्त तक अपवित्र नहीं होंगी जब तक कि हमको इस बात का विश्वास ना हो जाए कि उसने बनाते समय, कपड़ा सिलते समय अपने भीगे हाथ को या अपने शरीर के भीगे हुए अंग को उससे टच किया हो, या उस कपड़े के या उस मशीन की भीगी अवस्था में उसको टच किया हो। अगर हमको इस बात का विश्वास नहीं होता है तो उसको पवित्र कहा जाएगा। इसी प्रकार फैक्ट्रियों, बेकरियों वगैरह में बनने वाली रोटियाँ, होटलों में बनने वाली रोटियाँ, ब्रेड या इस प्रकार की चीज़ों का भी यही मसला है कि जब तक हमको उसकी अपवित्रता का विश्वास ना हो जाए तब तक उसको पवित्र ही कहा जाएगा और उसके बारे में छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे छानबीन करने के बाद हमको ये मालूम हो सकता हो कि कोई चीज़ पवित्र हुई है या नहीं पवित्र हुई है, अपवित्र हुई है या अपवित्र नहीं हुई है। तो एक जो मेन मसला है जिसको हम अगर मापदंड बनाएं तो ये हो सकता है कि इस संसार की हर चीज़ पाक है सिवाय उन 11 चीज़ों को जो हमने बताया, मगर ये कि जब तक कि हमको उसकी अपवित्रता का विश्वास ना हो जाए, जब तक विश्वास नहीं होता है अपवित्रता का, जब तक विश्वास नहीं होता है नजासत का, तब तक उस चीज़ को पवित्र ही कहा जाएगा। तो ये वो मसले थे जो हमारे अपवित्रता के भाग से संबंधित थे। यहाँ पर हम अपवित्रता के भाग को बंद करते हुए, ये मसले बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम एक एक मसले को यहाँ पर बयान करना शुरू करें तो ये प्रोग्राम कभी ख़त्म ना हो सकेगा, इसलिए हम अपने अपवित्रता के भाग को, नजासत के भाग को यहीं पर बंद करते हुए अगले भाग में आते हैं, अगला द्वार खोलते हैं, वो है पवित्रता का, जिसके बारे में ईश्वर अपनी पवित्र पुस्तक कुरान में इरशाद फरमाता है, وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَعَانْ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی بھیجا، آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو پوتر کر سکو، پاک کر سکو، اور شیطان کی گندگیوں کو، نجاستوں کو، اپوترتاؤں کو अपने से दूर कर सको। तो इसी से पवित्रता की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है हमको। जैसा कि हमने अपने किसी प्रोग्राम में यही बताया था कि इस्लाम इंसान को जहाँ एक तरफ स्वच्छ रहने के लिए कहता है, दूसरी तरफ पवित्र रहने के लिए भी कहता है, जिसके लिए बहुत से अहकाम बताए, खुद पवित्रता के भाग में बताया कि पवित्र होने का तरीका, या इस इंसान गुस्ल करे, वज़ू करे, या तयम्मुम करे, और इंसान उन चीज़ों को पहचाने जो किसी चीज़ को अपवित्र कर सकती हैं, जो हमारे पिछले भाग में हमने 11 चीज़ें आपके सामने बयान की। अब वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर बयान करेंगे जो किसी चीज़ को पवित्र कर सकती हैं। तो आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी नजिस चीज़ को पाक कर सकती हैं? उसमें हमारे मसाइलों में, अगर तहज़ील मसाइलों को पलटा जाए तो देखा जाए तो हमारे फुकहा ने 10 चीज़ों को ऐसी बताया है जो किसी अपवित्र चीज़ को पवित्र कर सकती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, जिसको हर इंसान जानता है और जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को पवित्र करता है, वो है पानी। पानी किसी भी अपवित्र चीज़ को पवित्र कर सकता है। पानी की बहुत सी किस्में हैं, बहुत से प्रकार हैं, जिनको हम आगे बयान करेंगे। पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक के बाद एक हम उन 10 चीज़ों का नाम लेंगे, उसके बाद विस्तृत रूप से इन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो पवित्र करने वाली चीज़ों में जो पहली चीज़ है वो है पानी। दूसरी चीज़ जो किसी अपवित्र चीज़ को उसकी शर्तों के बाद पवित्र करती है वो है ज़मीन। ज़मीन भी कुछ चीज़ों को ख़ास शर्तों के साथ पवित्र कर सकती है। जिनको हम आगे, वो शर्तें क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़मीन पवित्र कर सकती है, उनको हम आगे बयान करेंगे अपने प्रोग्राम में। और तीसरी चीज़ जो पवित्र कर सकती है दूसरी चीज़ों को, वो है सूरज। सूर्य भी बास चीज़ों को, कुछ चीज़ों को अपने विशेष शर्तों के साथ पवित्र कर सकता है। तीसरी चीज़ इस्तेहाला है जो पवित्र कर सकती है। इस्तेहाला किस चीज़ को कहते हैं, इसको हम आगे अपने प्रोग्राम में विस्तृत रूप से आपके सामने बयान करेंगे। और उसके बाद इंतकाल है जो चीज़ को पवित्र कर सकता है। तीसरी, उसके बाद जो चीज़ आती है वो इस्लाम है जो किसी अपवित्र चीज़ को पवित्र कर सकता है। फिर तबीयत है, फिर किसी चीज़ से उस नजासत का दूर हो जाना, यानी जो असल नजासत है, जो वास्तविक नजासत है, जो वास्तविक अपवित्रता है, अगर दूर हो जाए तो वो भी चीज़ को पवित्र कर सकती है। किस प्रकार, इसको हम आगे अपने प्रोग्राम में बयान करेंगे। इसी प्रकार वो जानवर जो नजासत खाता हो, जैसे कि अगर कोई इंसान, अगर जैसे अगर कोई जानवर अगर इंसानों का मल खाने लगा है, तो अगर उसका इस्तिब्रा कर दिया जाए तो वो जानवर भी पवित्र हो जाता है। इस्तिब्रा किस प्रकार किया जाएगा, जानवरों के इस्तिब्रा किस किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या शर्तें, इनको भी हम आगे अपने प्रोग्राम में बयान करेंगे। उसके बाद एक चीज़ जो अंतिम चीज़ है जो पवित्र कर सकती है, वो है मुसलमान का गायब हो जाना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सुनने के बाद अजीब सा लगता है, क्या मतलब मुसलमान गायब हो जाए तो पाक हो जाएगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम अपने प्रोग्राम में विस्तृत रूप से, हर हर गोशे को, हर हर चीज़ को विस्तृत रूप से आपके सामने बयान करेंगे और इसके हर हर मसले को आपके सामने पेश करेंगे। तो पवित्रताओं में वो चीज़ें जो किसी चीज़ को पवित्र कर सकती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है पानी। तो हम यहीं से शुरू करेंगे अपने इस बहस को कि सबसे पहले हम पानी के बारे में बातचीत करेंगे। पानी कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार वो पाक कर सकता है, और कोई चीज़ कैसे पानी से धुले जाने के बाद या पानी से टच होने के बाद पवित्र हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो पानी कितने प्रकार का होता है। जैसा कि हमने अपने किसी प्रोग्राम में बयान किया था कि पानी दो प्रकार का होता है, या पानी मुजाफ है या पानी मुतलक है। मुजाफ किस पानी को कहा जाता है, मुजाफ वो जल है, वो पानी है जो किसी चीज़ से लिया गया हो या उसमें कोई चीज़ इतनी मात्रा में मिलाई गई हो कि उसको पानी ना कहा जाता हो। किसी चीज़ से लिया गया हो, जैसे तरबूज का रस, सेब का रस, अंगूर का रस, ये सब चीज़ें मुजाफ हैं। किसी कोई चीज़ मिला दी गई हो, जैसे पानी के अंदर शक्कर के मिलाकर शरबत बना देना, अगर उसको शरबत कहा जाने लगे तो वो चीज़ मुजाफ होगी। मुतलक किसको कहते हैं, मुतलक वो चीज़, वो पानी है, वो जल है जो मुजाफ ना हो। हर वो पानी जिसको मुजाफ नहीं कहा जाएगा वो मुतलक होगा। खुद मुतलक पानी के भी अलग अलग प्रकार हैं, तकरीबन चार प्रकार में बांटा जा सकता है मुतलक पानी को। सबसे पहली चीज़ जो होती है मुतलक, किस पानी को कहते हैं, मुतलक पानी में जो चीज़ आती है वह है कुएं का पानी। उसके बाद जारी पानी या बहने वाला पानी, जैसे नहर, दरिया या इस प्रकार का जो पानी, जैसे झरनों वगैरह का पानी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो बारिश का पानी, जो पानी आसमान से वर्षा की सूरत में बरसता है उसको बारिश का पानी कहा जाता है। उसके बाद जो होता है ठहरा पानी। ये सब मुतलक पानी की किस्मों में से हैं, मुतलक पानी के प्रकार में से हैं। लेकिन जो ठहरा पानी होता है, जो एक स्थान पर रुका हुआ पानी होता है, वो भी दो प्रकार का होता है, या वो कुर होता है या कलील होता है। कुर किसे कहते हैं, कलील किसे कहते हैं, इसको हम अपने इसी भाग में, यानी जल और पानी की जो बातचीत कर रहे हैं इसी भाग में हम आपको आगे बयान करेंगे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई पानी किस प्रकार किसी चीज़ को पवित्र कर सकता है, तो सबसे पहला जो हमने बताया, पानी दो प्रकार का होता है, मुजाफ या मुतलक। मुजाफ पानी किसी भी चीज़ को पवित्र नहीं कर सकता है, चाहे वो मुजाफ पानी मात्रा में कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। और मुजाफ पानी की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी ये भी होती है कि अगर मुजाफ पानी में कोई नजासत, कोई अपवित्रता मिल जाए तो वो फ़ौरन अपवित्र हो जाता है और नजिस हो जाता है, चाहे वो कितनी मात्रा भी क्यों ना हो। जैसे अगर मान लीजिए हज़ारों लीटर शरबत रखा हुआ हो, तो अगर उसमें एक कतरा खून का गिर जाए तो वो अपवित्र हो जाएगा। लेकिन जो पानी पवित्र कर सकता है वो है मुतलक पानी, अपनी चारों प्रकार के साथ, और अपनी चारों प्रकार कुछ खास विशेषताओं के साथ कुछ चीज़ों को पवित्र करते हैं। वो विशेषताएं क्या हैं और किस प्रकार मुतलक पानी कैसे किसी चीज़ को पवित्र कर सकता है, इसको हम अपने अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।